आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में उद्यमी विकास योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अयोध्या मंडल के 1100 से अधिक उद्यमियों को बांटा 47 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में बॉटलिंग प्लांट का किया शुभारंभ। लिटरेचर फेस्टिवल को भी किया संबोधित। विकास कार्यों और रामनवमी की तैयारियों की समीक्षा की। बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति की ओर से लखनऊ में आयोजित हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने अधिक से अधिक किसानों को समिति से जोड़ने पर दिया जोर। डिजिटल एग्री मिशन के अंतर्गत हर किसान को दिया जाएगा एक डिजिटल पहचान पत्र। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी जानकारी। और केंद्रीय कर्मचारी 1 अप्रैल से कर सकेंगे नई एकीकृत पेंशन योजना के लिए आवेदन। पेंशन कोष नियामक ने जारी की अधिसूचना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने श्रीराम कथा पार्क में मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना के तहत अयोध्या मंडल के 1100 से अधिक उद्यमियों को 47 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया। उन्होंने युवा उद्यमियों के स्टार्टअप पर केंद्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सभी बैरियर हटाए गए हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे।
उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी प्राप्त कर रहा है, स्वतः रोजगार के साथ जुड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहे हैं, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और विकास और विरासत को जोड़ करके नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश अपने अन्नदाता किसानों के लिए, अपनी मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए, युवाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर दर्शन भी किया। इस दौरान उन्होंने श्रीराम मंदिर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज सदन में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाज निर्माण में साहित्य की उपयोगिता के बारे में चर्चा की।
अच्छी लेखनी, कालजयी लेखनी को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है। डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने अनेक बैरियर खड़े किए हैं, लेकिन इन बैरियर को पार करते हुए भी अगर हम कोई रास्ता फिर से बना सके, कोई कालजयी रचना के सृजन का मार्ग इस प्रकार के लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से आगे बढ़ा सकेंगे तो निश्चित ही साहित्य के लिए भी, समाज के लिए भी वह अत्यंत उपयोगी साबित होगा।
अयोध्या दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने आयुक्त सभागार में अयोध्या के विकास के साथ साथ रामनवमी की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अयोध्या में बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 61वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में कल प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने बैंक के शेयर होल्डर्स के खातों में 75,63,00,000 रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर किया। साथ ही स्मार्ट बैंकिंग गाइड का विमोचन किया और जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार बलरामपुर जिले में एक नया सहकारी बैंक शुरू करेगी।
एक नया हम सहकारी बैंक बलरामपुर में प्रारंभ करेंगे तो अब बलरामपुर के लिए नए जिला सहकारी बैंक की स्थापना की कार्रवाई के लिए सरकार इसमें आगे बढ़े और मुझे लगता है कि हम लोग इसको पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
उधर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने कल लखनऊ में बख्शी का तालाब क्षेत्र में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति के एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों द्वारा भंडारण की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि किसानों को दूर न जाना पड़े। श्री भूटानी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर सहकारी समिति से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
3-3.5 साल में मंत्रालय 60 से अधिक पहले ली हैं, चाहे वो पैक्स को लेके हों, चाहे आपका चीनी मिलों को लेके हों, चाहे बैंकों को लेके हों, हर क्षेत्र में काम किया है। कंप्यूटरीकरण कर रही है, कंप्यूटराइजेशन एक तर्ज पे चल रहा है जिससे कि सबको एक सीमलेसली एक सिस्टम में जोड़ा जाए और पारदर्शिता आए और लोन लेने में सुविधा लोगों को हो। और दूसरी तरफ जितने भी हमारे और आपके जो संस्थान हैं, सोसाइटीज हैं, उनका डेटाबेस उन्होंने बनाया है देश में, कहां कहां सोसाइटी आप देख सकते हैं खुद जाके ऑनलाइन, किस गांव में कितनी सोसाइटी वो भी देख सकते हैं।
श्री भूटानी ने बक्शी का तालाब क्षेत्र में स्थित परसहिया गांव में दुग्ध सहकारी समिति का निरीक्षण भी किया। प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सभी जिलों में 25 मार्च से 27 मार्च तक पर्यटन विभाग की ओर से प्रदर्शनी लगाई जाएगी, साथ ही जिलों में कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल बताया कि तीनों दिन विभाग की उपलब्धियों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 मार्च को प्रदर्शनी पांडाल का निर्माण करते हुए जनपद के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गई फिल्मों का प्रदर्शन भी होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। डिजिटल एग्री मिशन के अंतर्गत देश के हर किसान को एक डिजिटल पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कल यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पहल से किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से नई एकीकृत पेंशन योजना शुरू हो जाएगी। मौजूदा और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। पेंशन कोष नियामक ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। UPS चुनने के लिए दावा फॉर्म भरना होगा, जिसके जरिए केंद्र सरकार के 23 लाख से अधिक कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना UPS और राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। मथुरा के वृंदावन में गीता शोध संस्थान और रामलीला अकादमी की ओर से कल 3 दिवसीय भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत की गई। महोत्सव के पहले दिन दोनों देशों के बीच साहित्य और संगीत के आदान प्रदान को बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि इस आयोजन से भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को विस्तार मिलेगा। अयोध्या में रामनवमी के भव्य उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रामनवमी का मुख्य पर्व 6 अप्रैल को होगा। इस दिन श्री राम मंदिर में विशेष अनुष्ठान होंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
रामनवमी पर रामलला का विशेष अभिषेक और श्रृंगार होगा। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक श्री रामलला का अभिषेक होगा, जबकि 10:30 बजे से 11:40 तक पट बंद रहेगा। इसके बाद 11:45 तक श्री रामलला का श्रृंगार होगा। इस दौरान मंदिर के पट खुले रहेंगे। फिर श्री रामलला को भोग अर्पित किया जाएगा, जिसके दौरान पट बंद रहेंगे। दोपहर 12 बजे श्री राम का प्राकट्य उत्सव के साथ भव्य आरती और सूर्य तिलक होगा। तन्मय सोनिया, आकाशवाणी समाचार।
मऊ शाहगंज खंड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे ने शाहगंज से चलने वाली बलिया शाहगंज पैसेंजर ट्रेन 28 मार्च तक निरस्त कर दी है। वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने यह जानकारी दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में उद्यमी विकास योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अयोध्या मंडल के 1100 से अधिक उद्यमियों को बांटा 47 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में बाटलिंग प्लांट का किया शुभारंभ। लिटरेचर फेस्टिवल को भी किया संबोधित। विकास कार्यों और रामनवमी की तैयारियों की समीक्षा की। बहुद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति की ओर से लखनऊ में आयोजित हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने अधिक से अधिक किसानों को समिति से जोड़ने पर दिया जोर। डिजिटल एग्री मिशन के अंतर्गत हर किसान को दिया जाएगा एक डिजिटल पहचान पत्र। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी जानकारी। और केंद्रीय कर्मचारी 1 अप्रैल से कर सकेंगे नई एकीकृत पेंशन योजना के लिए आवेदन। पेंशन कोष नियामक ने जारी की अधिसूचना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।